Pone.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي الناس أو قال بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق فقال حضرت الصلاة؟ قالوا نعم، فقال مروا بلال فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا أستطيع، فلو أمرت غيره. قال ثم أغمي عليه فأفاق فقال مروا بلال. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور آپ کے وصال کا تذکرہ چل رہا ہے، کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یہ ایک لمبی حدیث ہے، اور سالم ابن عبید ایک صحابی ہیں، ان سے مروی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الوفات میں بار بار غشی ہوتی تھی. مرض الوفات کا مطلب وہ بیماری کہ پھر جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کو بولتے ہیں مرض الوفات. اس میں آپ کو بار بار بے ہوشی طاری ہوتی تھی، اور جب افاقہ ہوتا، ہوش آتا، تو زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں. کیا؟ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں. امت کے لیے بھی بہت بڑی تنبیہ ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کہ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوچھتے ہیں نماز کا وقت ہوا یا نہیں. اور سب سے آخری جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے وفات سے پہلے، وہ نکلا الصلاة وما ملکت ایمانکم. الصلاة یعنی نماز کا خیال رکھنا، امت کو آپ نے وصیت فرمائی. وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو خادمین ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، خیال رکھنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. امت کے لیے بہت بڑا سبق. آج ماتحتوں کے ساتھ جیسا سلوک ہونا چاہیے، اسلام جس سلوک کی تعلیم دیتا ہے، ہم نہیں کرتے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی الصلاة وما ملکت ایمانکم. اس حدیث میں بھی ہے کہ آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، ہوش آتا ہے تو پوچھتے ہیں حضرت الصلاة، نماز کا وقت ہوا یا نہیں. نماز کا وقت ہو جانے کا جب حال معلوم ہوتا، تو چونکہ آپ کو مسجد میں تشریف لے جانے کی سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، اس لیے آپ ارشاد فرماتے کہ بلال سے کہو کہ نماز کی تیاری کریں، اور صدیق اکبر سے کہیں کہ وہ نماز پڑھائیں. متعدد مرتبہ ایسا ہی ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ بڑے رقیق القلب تھے، نرم طبیعت کے آدمی تھے. اس لیے اکثر حالات میں جب نماز پڑھاتے تھے اور حضور یاد آتے تھے، ان پر رقت طاری ہو جاتی تھی. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتی تھیں कि मेरे वालिद मोहतरम से आपकी खाली जगह न देखी जाएगी। इसलिए हजरत आयशा ने दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह, अबू बकर वालिद मोहतरम बड़े रकीकुल कल्ब हैं, नरम दिल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर वो खड़े होकर नमाज पढ़ाएंगे, आपको नहीं देखेंगे तो रोने लगेंगे, नमाज पढ़ाने की ताकत नहीं रहेगी। इसलिए किसी और को आप फरमा दें कि वो नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने यह बात बार बार कही, एक दफे नहीं बार बार कही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की किस्से वाली औरतें बनना चाहती हो, अबू बकर से कहो नमाज वही पढ़ाएंगे। यहां जो हुजूर ने फरमाया कि तुम हजरत यूसुफ वाली औरतें बनना चाहती हो, इसमें उलमा के चंद अकवाल हैं इसके मतलब में। अव्वल ये कि तुमसे मुराद हजरत आयशा हैं और उन औरतों से मुराद सिर्फ जुलेखा हैं, और जमा का लफ्ज ताजीमी मुहावरे के एतबार से फरमाया। इस कौल के मुआफिक मतलब यह है कि तुम बेजा इसरार कर रही हो, ऐसे ही जैसे कि जुलेखा एक नाहक बात पर इसरार कर रही थी, तुम भी एक बेजा बात पर इसरार कर रही हो। गलत बात पर तुम्हें इसरार नहीं करना चाहिए। ये गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह की कि जो हालात मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानती, इसलिए तुम्हें इसरार करने का, बार बार कहने का कोई हक ही नहीं है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई तो अब आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा भी खामोश हो गई। उसके बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बराबर नमाज पढ़ाते रहे। फिर वो वक्त भी आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया से तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरात सहाबा को चूके इस सदमे की तवक्को नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए बहुत मुतासिर हुए। बहुत से सहाबा ऐसे थे कि वो अपने होश खो बैठे, होश ही नहीं है, क्या हो गया। कुछ सहाबा ऐसे थे उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, बाहर निकले तो क्यों निकले। एक औरत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत तो हर एक सहाबी को, सहाबिया को थी। उन्होंने जब सुना अल्लाह के रसूल दुनिया में नहीं रहे तो वहीं पर गशी आई और इंतकाल हो गया इस सदमे में। बहुत से साहब ऐसे थे उनको चुप लग गई, चुप लगने का मतलब जबान बंद हो जाती है, बोलते नहीं कुछ भी। उनमें हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी हैं, खामोश चुप, दरवाजा बंद करके बैठ गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजा बंद करके बैठ गए। एक सहाबी खेती करते थे, अब्दुल्ला इब्ने जैद इब्ने अब्द रब्बी ही। जब उन्होंने सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दुनिया में नहीं रहे तो आसमान की तरफ हाथ उठा दिए कि अल्लाह, जिन आंखों से मैं अब हुजूर को देखता था अब तक, अब मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, मेरी बिनाई सल्व कर ले तो, मेरी रोशनाई खत्म कर दे, मैं अब किसी चीज को देखना ही नहीं चाहता अल्लाह। आप अंदाजा लगाइए कि सहाबा को हुजूर से कैसी मोहब्बत है। एक हदीस में आता है कि एक दफे की बात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात इरशाद फरमाई कि हजरात सहाबा के बारे में आता है वो कहते हैं कि ऐसी खुशी इससे पहले उनको कभी नहीं हुई थी। वो क्या बात थी? बात यह थी कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें आपसे ऐसी मोहब्बत है कि जब हम अपने घर में रहते हैं और आप याद आ जाते हैं तो हमें रहा नहीं जाता, हम बेचैन होकर उठते हैं। और किसी तरह मस्जिद नबवी में या उसके आसपास जहां हमें ख्याल होता है कि आप यहां होंगे, वहां आते हैं और आपको देख लेते हैं, हमें तसल्ली हो जाती है, हमारी बेचैनी खत्म हो जाती है। हमें परेशानी इस बात की है, हमें फिक्र अब ये दामनगीर है कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे, आप जन्नत में होंगे तो आप तो जन्नत के बहुत ऊंचे मकामात पर होंगे और हमको पता नहीं जन्नत मिले ना मिले, अगर मिल भी जाए तो कहां आप और कहां हम। तो अल्लाह के रसूल हमें फिक्र ये सता रही है, क्या जैसे दुनिया में हम आपको देखकर तसल्ली हासिल कर लेते हैं, क्या जन्नत में हम आपको देख सकेंगे नहीं देख सकेंगे, इसलिए कि आपके बगैर तो जन्नत के मजे भी बेकार हैं। कितनी ऊंची बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, इंसान उन्हीं लोगों के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत है। अल मरउ माने इंसान, आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसको मोहब्बत होगी। हजरत सहाबा ने जब ये बात सुनी तो उनके तो वारे नियारे हो गए, खुशी के मारे उछल पड़े, इसलिए कि उन्हें सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। खुश हो गए, लेकिन बस अब तो अल्लाह के रसूल, हुजूर ने फरमाया कि जिससे मोहब्बत होगी उसी के साथ होगा, हमें हुजूर से मोहब्बत है, जन्नत में हुजूर का साथ मिलेगा, हुजूर की मईयत मिलेगी। अलमरु मान मामन अहब्बा, ऐसी मोहब्बत के नमूने मिलते हैं हजरत सहाबा के यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि मदीने में हजरत अली हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकान आपसे जरा दूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो करीब में आ जाएं। तो किसी ने कहा कि हारिसा एक सहाबी थे, अंसारी सहाबी, उनके बहुत से मकानात थे। तो किसी ने कहा कि हजरत हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु का घर करीब में है, उनसे तबादला हो जाए। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा करीब में आ जाएंगी। हुजूर को हजरत फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी, आप फरमाते थे कि हिया बदअतु मिन्नी, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ऐसी मोहब्बत थी। आप घर तशरीफ ले आते, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी होती, इस्तकबाल करती, हाथ पकड़ती, बिठाती। और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जब हुजूर से मिलने आती तो हुजूर उनके इस्तकबाल में खड़े होते, हाथ पकड़ के बिठाते। बेटियों को ऐसी ही मोहब्बत देनी चाहिए, मोहब्बत और अजमत बेटियों की दिल में होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए, खूब होनी चाहिए। तो हजरत फातिमा सिद्दीक रजी अल्लाह, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में हुजूर चाहते थे कि करीब में आ जाए, लेकिन मकान दूर था। तबादले की बात आई तो कहा हजरत हारिसा का घर करीब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे शर्म आती है इसलिए कि उनसे पहले भी तबादला हो चुका है, अब उनसे कहते हुए शर्म आती है, बात हो गई खत्म। लेकिन यह खबर हजरत हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंच गई कि हुजूर को मकान के तबादले की जरूरत है फातिमा के लिए, लेकिन सरकार ने कहा कि मुझे शर्म आती है कहते हुए। जब उनको यह बात मालूम हुई तो बेचैन हो गए, परेशान और रोते हुए वालिहाना अंदाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि या रसूल अल्लाह, आप ये फरमा रहे हैं कि मुझे शर्म आती है, या रसूल अल्लाह, मैं, मेरी जान, मेरा माल सब तो आप ही का है, और जो माल आपके पास आ जाए वो मेरे लिए अफजल है, महबूब है उस माल से जो मेरे पास बाकी रहे, मेरी सआदत मंदी, या रसूल अल्लाह, जो चाहे आप कबूल फरमाइए, हम सब आपके हैं। ऐसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जंगे उहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों की तरफ से बड़ी सख्तियां पहुंची, मुसीबतें पहुंची, जख्म पहुंचे, आपके दो आगे के दांत शहीद हो गए, आपकी जो जंगी टोपी होती है खुद की कड़ियां, उसके दो रॉड अंदर यहां दाखिल हो गए थे, जिसको निकालते वक्त दांत टूटे थे, और जिन्होंने निकाले हजरत अबू उबैद इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके भी खुद दांत शहीद हो गए थे निकालते वक्त, इतनी मजबूती से वो रॉड अटके हुए थे, लोहे के रॉड थे वो, लोहे की कड़ियां। तो आप अंदाजा लाइए कितने जख्मी है हुजूर के, दो रॉड यहां पे घुसे हुए हैं, सर में भी पत्थर लगा हुआ है, चोट लगी हुई है, काफी खून बहा था। हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने चटाई जलाकर खून रोका था, जिस्म में भी जगह जगह पत्थर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला भी नहीं जा रहा था, दो के सहारे पर चल रहे थे आप, इतने जख्मी जख्मों से चूर थे। और फिर सहाबा का सदमा, 70 शहीद हो चुके थे, 70 से ज्यादा बहुत ज्यादा जख्मी हालत में थे, तो इनका सदमा अलग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मौके पर जब काफिरों की तरफ से हमला होता था, तो हुजूर के एक सहाबी थे साद बिन वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु, अशराए मुबशरा में से। काफिरों का सबसे ज्यादा जोर हुजूर पर हमले का था, वो तीर मारते थे ताक ताक के कि किसी तरह से ये बाकी ना रहे, जिंदा ना रहे, ये अगर खत्म हो गए तो सब कुछ खत्म हो गया। हजरत साद बिन वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के सामने खड़े हो गए, ढाल नहीं थी वो, कहीं इधर उधर रलमल गई, मिल नहीं रही थी, तो साद इब्ने वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद खड़े हो गए तीरों को रोकने के लिए। और आगे की बात बताऊं, जब तीरों को रोक रहे थे तो अपना चेहरा हुजूर की तरफ कर रखा था, पीठ नहीं, बेअदबी नहीं हो जाए हुजूर की। और उनके पीछे का हिस्सा, सर गर्दन और पीछे का हिस्सा, कहते हैं कि पोर्वे की बराबर कोई जगह ऐसी नहीं थी जिस पर जख्म ना हो, छलनी हो गए थे हुजूर के लिए, ऐसी मोहब्बत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी दुआएं मिली होंगी इनको, फिर वो मुस्तजाब दावात सहाबा में से थे, जो दुआ मांगते तो कबूल होती थी फौरन की। साद बिन वक्कास रजी अल्लाह तआला जब मदीने में जा रहे हैं, तो मदीने से एक औरत निकल कर आती है, लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे शोहर इस गजवे के अंदर शहीद हो गए, वो कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शोहर चला जाए तो भाई सहारा बनते हैं, या बाप, कहा तुम्हारे बाप भी इस गजवे में शहीद हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा भाई भी तुम्हारे शहीद हुए हैं, किसी ने दूसरे ने खबर दी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तड़प कर कहती है मुझे ये बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने बताया वो जिंदा सलामत हैं, तशरीफ ला रहे हैं। जब हुजूर के चेहरे को देखा तो जोर से एक नारा लगाया, कुल्लु मुसीबतिन बादक जललु या रसूल अल्लाह, आप है तो सारी मुसीबतें हेच हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, आप रहने चाहिए बस। अब अंदाजा लगाइए कितनी मोहब्बत है, बाप कुर्बान, भाई कुर्बान, शोहर कुर्बान, लेकिन हुजूर के लिए सब कुर्बान, उनको हुजूर चाहिए बस। इसलिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, तो हजरात सहाबा पर ये जो सदमा हुआ है, ये सदमा बहुत अजीबो गरीब था। होश खो बैठे कितने सहाबा, कितने सहाबा होश खो बैठे। कुछ लोग तो ऐसे थे बाद में जब सुनकर आए और हुजूर की कब्र को देखा, तो कब्र को देखकर ही उनकी जान निकल गई, क्योंकि उनको तवक्को ही नहीं थी, ऐसी मोहब्बत थी कि उनको तवक्को ही नहीं थी कि आप हमसे जुदा हो सकते हैं। इसलिए हालात पेश आए, जब आप दुनिया तशरीफ ले गए, उमर जैसे मजबूत आदमी तलवार हाथ में लिए फिर रहे हैं, अकेले कोई किसी ने अगर कह दिया हुजूर चले गए तो गर्दन उड़ा दूंगा, कितने मजबूत हैं वो। उस्मान गनी भी अपनी जगह बहुत मजबूत है रजी अल्लाह तआला, और भी सहाबा, लेकिन ये हादसा ऐसा था। इसलिए एक मौके पर आगे एक हदीस आएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अगर किसी को अल्लाह पाक ने दो बच्चे दिए और नाबालिगी की हालत में उनका इंतकाल हो गया, उस पर उसने सब्र कर लिया, अल्लाह इसको इस सबर के बदले जन्नत देंगे। तो पूछा गया अगर किसी का एक ही फरत है, एक ही बच्चा है, तो फरमाया हाँ इस पर भी इसने सबर कर लिया, यानी एक बच्चा नाबालिगी की हालत में चला गया, फरमाया इस पर सबर कर लिया तो इस पर भी जन्नत मिलेगी। हज़रत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा अगर किसी का बच्चा ही नहीं हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर अगर किसी ने मेरी वफात की खबर सुनी और उसने मेरे जुदाईगी के सदमे को महसूस किया, उस पर सबर कर लिया, तो अल्लाह पाक उसको भी जन्नत अता फरमाएंगे। तो ये हालात थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरात साहबा परेशान, लेकिन खलीफा जो हुजूर के खलीफा बनने वाले थे, नायब रसूल, अल्लाह ने उनको बहुत मजबूत जिगर अता फरमाया, क्योंकि उनसे काम लेना था उम्मत को संभालने का, इसलिए वो अपने होशो हवास के साथ थे। तो उन्होंने फिर उम्मत को संभाला और सबसे पहला जो खुतबा इरशाद फरमाया उसमें शिर्क को जड़ से मिटा दिया, खत्म कर दिया। अल्लाह के बाद अगर कोई जात ऐसी हो सकती थी कि जिसकी पूजा की जा सकती हो बफर्जे महाल, जिसके सामने सजदा किया जा सकता हो, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात हो सकती थी। आपने सबसे पहले जो खुतबा इरशाद फरमाया यही कहा, मन कान यअबुदु मुहम्मद फइन्न मुहम्मदन कद मात वमन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। लोगों अच्छी तरह सुन लो, अगर तुम में से कोई हजरत मोहम्मद की परस्तिश करता था, पूजा करता था, अच्छी तरह जान लो हजरत मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, यानी वो माबूद नहीं थे, वो रसूल थे। और जो अल्लाह की परस्तिश करता था, फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, हमेशा से हमेशा रहेगा, उसको कभी मौत नहीं आएगी। शिर्क की जड़ काट दी पहले ही खुतबे में आपने। फिर उम्मत का सबसे पहला इजमा जो हुआ है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर हुआ है, सबसे पहला इजमा। हजारों लोगों ने पहले ही दिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की, दूसरे दिन भी बैत जारी रही, तीसरे दिन भी लोग टूटे पड़ते थे बैत के लिए। और सबके जहनों दिमाग में ये बात आ गई, जब अल्लाह के रसूल ने खुद दीन का इमाम अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को अपनी जिंदगी में तय किया, मुसल्ले पर खड़ा किया अपने, तो दुनिया का इमाम भी बनाए जाने के अगर लायक कोई शख्सियत है तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत है। लोगों के दिल में ये बात ठीक है, संभालेंगे कैसे, इसलिए कि बड़े नरम तबीयत के आदमी थे अब तक। लेकिन जब देखा लोगों ने कि जब हालात ने चारों तरफ से घेरा मदीने को, मुसलमानों को, और आपने अपने फैसले सादिर करने शुरू किए, तो हजरत उमर जैसे मजबूत आदमी कहते थे रिफ्कन या अबा बकर, नरमी इख्तियार करें मुमिनीन, नरमी इख्तियार करें, नरमी। आपको जोश आता था कहते थे अयुन कसुद्दीन व अना हय, क्या ऐसा हो सकता है कि दीन में कमी बेशी हो रही हो और मैं जिंदा रहूं, मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, जब तक मेरी जान में जान है मैं दीन में जरा भी कमी बेशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसी मजबूती दिखाई और इस मजबूती के असरात मशरिक और मगरिब तक पहुंचे। जो इस्लाम दुश्मन बड़ी बड़ी ताकतें थी उन्होंने भी देख लिया, समझ लिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जो आपके नाइब बैठे हैं वो बड़े मजबूत हैं, कमजोर नहीं है। 2.5 साल की मुद्दत के अंदर जितने फितने थे सबका कला कमा कर दिया, जड़ से उखाड़ फेंका। उसके बाद में अल्लाह ताला ने इस उम्मत की बागडोर हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में रखी और फिर वो मुसलमानों के खलीफा बने। शानदार आदिलाना मुनसिफाना निजाम कायम हुआ, ऐसा निजाम के फिर दुनिया की तारीखों में मिसालें नहीं मिलती। दुनिया की जो तारीख, अक्वाम आलम की तारीख की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे आदिलाना निजाम की बात नहीं मिलती है। जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोगों से मतलब जो गैर मुस्लिम लिखने वाले दानिश्वर हैं, वो भी इस बात को सराहते हैं اگر نظام چاہتے ہو عادلانہ منصفانہ اپنے ملکوں میں تو عمر جیسا لے کر آؤ. ایسا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے گئے تو اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بالاجماع امیر المؤمنین طے کیا گیا اور اللہ تعالی نے پھر آپ سے کام لیا. ایسا کام لیا کہ حضرات صحابہ اکرام کی جمعیت بھی مجتمع ہو گئی اور انتشار بالکل نہیں رہا, اور چند دنوں کے اندر عرب کے اندر جو کچھ فتنے اور فساد بھڑک اٹھا تھا, فتنے کھڑے ہو گئے تھے. سب سے بڑا فتنہ جو ہوا تھا وہ ختم نبوت پر حملہ تھا, یعنی مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے, جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے, ان سب کو ختم کیا گیا. پھر ادھر ادھر سے جو حملے ہو رہے تھے دوسری ریاستوں سے, ان سب کی روک تھام ہوئی اور ایک بڑا لشکر عراق کی طرف روانہ کر دیا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر بنا گئے ان کا, انہوں نے وہاں کی مہم شروع کر دی اور چند دنوں میں آدھے سے زیادہ عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا. پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو پورا ایران اور پورا عراق اور پورا ایران اور فارس کا جتنا ملک تھا سارا کا سارا اسلامی سلطنت کے اندر شامل ہو گیا. فعلموا ان قد صدق ثم امرهم ان يغسله بنو ابي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی بتاؤ؟ بتایا تھا نا میں نے کس نے پڑھائی تھی, امام الانبیاء جب خود سامنے آ گئے ہیں تو امامت کون کرے گا, اور اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. اس لیے دس دس لوگوں نے کیا کی, نماز خود پڑھی اور تین دن تک یا ڈھائی دن تک یہ نماز ہوتی رہی. بعض روایت کے مطابق تقریباً ڈیڑھ دن تک یہ نماز ہوتی رہی, لوگ پڑھ پڑھ کے جاتے رہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے کے اندر قبر کے اندر رکھ دیا گیا اور آپ آج تک وہیں پر آرام فرما ہیں. جس طرح حضور کی زندگی میں ادب تھا آج بھی وہاں جا کر ایسے ہی ادب کرنا ہے. شور نہیں, آواز نہیں, چیخ نہیں, بے ادبی والی گستاخی والی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. آج ہم دیکھتے ہیں وہ لوگ جاتے ہیں صاحب سیلفیاں لے رہے ہیں کھڑے ہو کے, یہ بے ادبی ہے. زور سے آواز نہیں, آپ فون پہلے ہی بند کر دیجئے, اس لیے کہ فون کی گھنٹی بجے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, جب حدیث پاک میں موجود ہے کہ مسجد نبوی میں کوئی سلام پیش کرتا ہے تو میں خود سنتا ہوں, تو اس لیے فون پہلے ہی بند کر دیجئے آپ اور صلاۃ و سلام پیش کر کے چلے جائیے. درخواست مغفرت کیجئے, مغفرت کی درخواست کیجئے, لیکن ادب کرنا. جیسے زندگی میں ادب تھا ایسے ہی وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ رکھنا ہے, اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرنی. اس سلسلے بہت سے روایتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے, نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, سیئات سے بچائیے, برائیوں سے بچائیے, موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے, خاتمہ بالخیر, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.